ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जया मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीर् उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। तो श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद से हम पढ़ रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं का सुंदर वर्णन श्रीमद् भागवत में हमको मिलता है। जो चरित्र सुनकर हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है और इसी शास्त्र से पूरे शास्त्र भी परिपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि व्यासदेव ने सब कुछ लिखा। व्यासदेव भगवान के ज्ञान अवतार थे, उन्होंने सारा शास्त्र लिखा, फिर भी उनको समाधान संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। तो नारद मुनि ने उनको उपदेश किया कि जब तक आप श्री कृष्ण भगवान के दिव्य चरित्र का, पावन पुण्य चरित्र का वर्णन नहीं करते हैं, तब तक आपका लिखा हुआ सारा शास्त्र व्यर्थ है। तो इस उत्तर को प्राप्त करके व्यास मुनि दोबारा अपनी गुफा में गए और उन्होंने फिर श्रीमद् भागवत का रचना किया। श्रीमद् भागवत में उन्होंने भक्तों का चरित्र का वर्णन किया सबसे पहले, और भक्तों के चरित्र, भगवान के अवतार उनके चरित्र वर्णन करने के बाद नौवें स्कंद के बाद दसवें स्कंद में उन्होंने प्रत्यक्ष कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया है। उसमें 89 अध्याय हैं। तो उसमें पहले जो 40 अध्याय हैं वो भगवान के वृंदावन की लीला के बारे में है, और उसके बाद में जो 59 अध्याय हैं वो भगवान के मथुरा लीला, द्वारका लीला, हस्तिनापुर लीला, इस पर आधारित है। और आखिरी लीलाएँ जो हैं भगवान के अंतर्धान की, वो 11वें स्कंद में आती है। इस तरह से भगवान का दिव्य चरित्र यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत है, जो कि हम द्वारका में बैठे हैं, इसलिए द्वारका का जो अध्याय है उसमें हम पढ़ रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान हस्तिनापुर गए, कहाँ से? द्वारका से, क्योंकि उनको खबर मिली थी कि वारणावत में लक्षागृह में जलने की जो खबर आई थी, जिसमें पांडवों के मृत्यु की खबर भी आई थी, वो झूठ थी और पांडव लोग सुखरूप वापस लौट कर आए हैं। तो भगवान बड़े आनंद से सबको लेकर हस्तिनापुर गए। हस्तिनापुर में पांडवों ने तब तक द्रौपदी से विवाह कर लिया था, है ना। जब राक्षसगृह से निकले तो वो द्रौपदी के राज्य में गए और वहाँ पर अर्जुन ने ब्राह्मण के वेश में लक्ष्य भेद किया, स्वयंवर जीत लिया और द्रौपदी का हाथ लेकर सब लौट के आए। और मजाक में उन्होंने माता को कहा था कि माता आज हमने एक विशेष भिक्षा लेकर आए हैं, हर रोज़ भिक्षा लेकर आते हैं, आज हमने एक विशेष भिक्षा लेकर आए। तो माता जी का पीठ था उनकी तरफ, उन्होंने कहा हर रोज की तरह आज भी बांट लो उसको। फिर उनको आश्चर्य हुआ, कह रहे तो द्रौपदी है लेकिन जो वचन बोल दिया मुंह से वो सत्य होना ही है। तो फिर पांचों भाइयों का द्रौपदी से विवाह हुआ और भगवान उनको मिलने गए तो कुंती देवी बस सभी लोगों को भगवान ने मुलाकात किया। उस समय चतुर्मास्य था तो युधिष्ठिर महाराज ने विनती किया भगवान को कि आप 4 महीने यहीं रुकिए, बारिश का मौसम है, चतुर्मास्य का व्रत यहीं पर कीजिए। तो इस तरह से भगवान की और युधिष्ठिर महाराज की इच्छा से भगवान वहीं पर रुके। जब ये कार्य समाप्त हो गया काल, उस समय कृष्ण और अर्जुन एक दिन सफ़र करने निकले प्रेम से, और क्योंकि भगवान को पता था कि आगे जाकर बड़ा युद्ध होने वाला है तो अर्जुन अपने शस्त्र अस्त्र चलाने में कितने निपुण हो गए हैं, कितने कुशल हो गए हैं, इसको देखने के लिए वो उनको ले गए प्रैक्टिस, हाँ डेमोन्स्ट्रेशन। तो अर्जुन ने अपने सारे शस्त्रों का प्रयोग किया और जंगल के खूंखार जानवरों का वध किया उन्होंने। उसमें से जो यज्ञ के लिए योग्य थे उनको भगवान ने हस्तिनापुर भेज दिया और आगे चलकर अर्जुन बहुत थक गए, सब लोग थक गए, दोनों तो बैठ गए एक जगह पर और भगवान ने कहा जल ले आओ, प्यास लग रही है। तो भगवान गए, अर्जुन गए, भगवान विश्राम फरमा रहे थे। तो अर्जुन गंगा जमुना जी के किनारे गए, जो जमुना जी है ना वो दिल्ली में भी बहती है, मतलब हस्तिनापुर के पास, उसके आगे वृंदावन चले जाती हो। तो हस्तिनापुर के में भी जमुना जी थी और फिर वृंदावन में भी जमुना जी, तो यही जंगल में जा रहे थे तो उस समय जमुना जी बह रही थी। तो जब जल लेने गए देखा तो एक सुंदर युवती, बहुत ही सुंदर युवा अवस्था में और जिनकी चाल, जिनकी आंखें बड़ी मोहक थी, ऐसी लड़की अकेली वो जमुना नदी के किनारे में यहाँ वहाँ डोल रही है। तो अर्जुन उनको प्रश्न करते हैं, अरे इतनी सुंदर स्त्री आप, इतनी नौजवान, अकेले क्या कर रहे हो, किस उद्देश्य से यहाँ पर अकेले घूम रहे हो। तो वो सुंदर कन्या कहती है कि मैं यमुना हूँ, मैं सूर्यपुत्री यमुना हूँ। इसका इतिहास आपको बताएं संक्षेप में कि जब सूर्य भगवान का विवाह हुआ उषा के साथ, उषा देवी, तो इतना उनका तेज था कि जब पहले बार संबंध उनका हुआ तो उषा माता जी बहुत डरी हुई थी, एकदम इतनी डरी हुई थी, इतना प्रकाश और इतना तेज, बहुत डरी हुई थी, वो डर डर के संबंध हुआ। तो सूर्य भगवान ने कहा जो हुआ सो हुआ, इतने डर के मारे आप मेरे पास आई तो ये निश्चित है कि जो पुत्र मेरा अभी होगा आपको वो भी दुनिया के डर का कारण बनेगा, सब दुनिया डरेगी उससे, उसका नाम क्या है, यमराज। तुषा देवी को बड़ा दुख हुआ, अरे मैंने ऐसा क्यों किया, अब ऐसा पुत्र हुआ कि जिसके लिए पूरा विश्व डरेगा। ऐसा नहीं कि वो खराब पुत्र है, महाभागवत है वो, भगवान का परम भक्त है, लेकिन सेवा उसके क्या होगी, सब पापियों को पकड़ पकड़ के दंड देना, तो कोई पापी हो या कोई अच्छा या बुरा व्यक्ति उसका मुंह देखना नहीं चाहेगा, उसका मुंह देखना मतलब दंड को सहन करना। तो अगली बार जब संबंध करने का समय आया तो उषा देवी बड़ी मन की तैयारी करके बड़े प्रेम से गई अपने पति के पास। तो उस समय सब अच्छा संबंध हुआ। तो सूर्य भगवान ने कहा अभी अभी आपको पुत्री होगी और क्योंकि आपने प्रेम से संतुष्टि से संबंध किया है, अभी ये पुत्री होगी जो बड़े भाई के डर से लोगों को मुक्त कराएगी, ये नदी रूप होगी, देवी तो है लेकिन नदी रूप में सेवा करेगी, इसके जल में जो स्नान करेगा वो यमराज के भय से मुक्त हो जाएगा। तो इनका नाम क्या था, यम और यमी, यमराज और यमुना, ये दोनों भाई बहन हैं। हाँ, तो यमराज से भैसे आपको मुक्त होना है तो आपको यमुना जी में स्नान करना होगा। बोलो यमुना मैया की जय। तो ये यमुना देवी जन्म से ही जब समझने लगी तब से उनको मन भगवान विष्णु पर केंद्रित था। एकाग्र होकर उसने अपने पिताजी से भी कहा था कि मैं केवल विष्णु भगवान से विवाह करूंगी और तब तक मैं मेरे ही जल के अंदर तपस्या करूंगी। तो उनके पिता ने उनको जल के अब उनके जल के अंदर एक बड़ा महल बना के दिया था, बड़ा सा घर बना के दिया था, उसमें तपस्या करती थी। और इस समय अपने ही किनारे में चल रही है। तो अर्जुन ने ये बात सुनी तो अर्जुन ने ये बात जाकर कृष्ण को कही कि कोई कन्या यहाँ पर घूम रही है और वो आपसे विवाह करना चाहती है, क्योंकि वो कहती है कि आपके स्वामी जो बैठे हुए उनसे मेरी सिफारिश करो, मेरा निवेदन उनके सामने रखो। भगवान की प्राप्ति करनी है ना तो एक भक्त की आवश्यकता होती है ना। देखो कितनी जितनी कथाएं कि हर कथा में ये सत्य सामने आ रहा है। डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते हैं भगवान को, भगवान हमारे बीच में भक्त होना चाहिए। इंद्र ने भी अपराध किया था भगवान का, तो माफी कैसे हुई? एक भक्त बीच में आए, सुर भी गाए, वो लेके गई सिफारिश किया, निवेदन किया, तो भगवान ने उनको माफ कर दिया। यहाँ पर भी तपस्या कर रहे कब से, भगवान वहीं पर बैठे हैं, लेकिन अर्जुन का माध्यम आवश्यक था। अर्जुन ने जाके निवेदन किया तो भगवान झट से उठे और सीधे उन्होंने यमुना जी का हाथ अपने हाथ में लिया। हाँ, मतलब क्या हुआ, क्या बोलते हैं गुजराती में वो, हस्तमिलाप। वहीं पर हस्तमिलाप हो गया उनका और सीधे जाके रथ पर बिठा दिया उनको और सीधे हस्तिनापुर ले गए और कुंती देवी को सुपुर्द किया, उनको अपने पास रखिए, उनको जब जाना होगा द्वारका तो ले जाएंगे, क्योंकि अभी तो विवाह नहीं हुआ है, अभी तो विवाह होगा। तो कुंती देवी ने बड़े प्रेम से उसको अद्भुत तरीके से देखा, कह रही कितनी सुंदर कन्या है, बड़ी प्रसन्न हो गई कुंती देवी। तो इस प्रकार से ये श्री कृष्ण भगवान का चौथा विवाह था। तो आपने कहा दो विवाह बीच में किधर गए, दो विवाह जो है आपको शाम को बताएंगे आज, क्योंकि शाम को हम जाम्बुवंत के गुफा में जाएंगे और जाम्बुवंत गुफा में ये जाम्बुवती का विवाह प्रसंग है, उसके संबंध में ही सत्यभामा के विवाह का प्रसंग भी है, इसलिए हमने उसको स्किप करके हम अभी चौथे विवाह पर गए। इसके बाद में युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हे भगवान, मुझे आप एक अच्छा शहर बना दीजिए। हाँ, क्योंकि खांडव वन है ना, खांडव वन बहुत जरा बंजर जंगल था पूरा, वो दुर्योधन ने बड़े कपट से उनको दिया था कि भाई ठीक है तुम लोग ये ले लो, मतलब क्या बनाएंगे बंजर में ये लोग, लेकिन भगवान ने बंजर में मंगल बना दिया, पूरा जंगल में मंगल। तो उसके पहले उस मतलब भगवान ने भगवान को युधिष्ठिर महाराज ने विनती किया था कि आप मेरे लिए अच्छा एक शहर बना दो। तो भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया और विश्वकर्मा को बुलाकर बहुत ही सुंदर अद्भुत नयन रम्य ऐसा एक शहर बना दिया। इसके अंदर काफ़ी महल, काफ़ी रस्ते, काफ़ी बगीचे, उपवन, वन, पर्वत, नदियाँ, हाँ बगीचे, सुंदर सुंदर फूल, सुंदर सुंदर पक्षी जो कुंजरव करते थे, ऐसे उन्होंने सुंदर शहर बना दिया जो इंद्र के इंद्र लोक अमरावती को भी शर्मिंदा करता था। तो उन्होंने भगवान ने उस शहर को नाम दिया इंद्रप्रस्थ। और फिर बचा हुआ जो भूमि था, ऐसा कहते कि अग्निदेव थोड़े बीमार हो गए थे और उनको कुछ जड़ी बूटियां स्वाहा करने की आवश्यकता थी, लेकिन इंद्र उनको अपने वन में ये जड़ी बूटियां के वृक्ष खाने को मना कर रहे थे। कैसा है ना, अभी देवता हो या नरकवासी हो या पृथ्वीवासी हो, सबके मैन सबके अंदर मैं तू तू रह चलते रहता है, अहंकार चलते रहता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा सुविधा मिलती है ना उतनी ज़्यादा आसक्ति बढ़ती है लोगों की। उससे देवता लोग भी मुक्त नहीं है, देवता लोग भी इसमें फंसे हुए हैं। तो ये इंद्र का वन है, इंद्र की जगह है, तो इंद्र मना कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया कि हमको बीमारी है, थोड़ा जड़ी बूटी खाना है। तो भगवान ने फिर उसको स्वीकार किया और अर्जुन को लेकर रथ पे बैठकर वो चले और उन्होंने पूरा जो बचा हुआ खांडव वन था वो उसको जला दिया और अग्नि को सुहा कर दिया। तो अग्नि बड़े प्रसन्न हो गए, तो अग्नि बड़े प्रसन्न हो गए जब ये जल रहा था खांडव। तो खांडव वन में मैं दानव, जो रावण के समय भी उसका उल्लेख आता है, रावण रावण के वो ससुर थे मंदोदरी के पिताजी, मैं दानव। तो ये मैं दानव जो है वो जैसे विश्वकर्मा देवताओं के आर्किटेक्ट थे, वैसे मैं दानव राक्षसों के आर्किटेक्ट थे, वो राक्षसों का महल बनाते थे। तो जब सब जगह अग्नि लग गई तो मैं दावन तो त्राही त्राही हो गया ना, वो तो जान के लिए भाग भाग के आया और भगवान और अर्जुन को शरण गया। वो बोला भगवान मुझे मत मारना, तो भगवान ने उनको अभय दे दिया। तो उस प्रसन्न होकर अग्नि का तो वैसे अग्नि मैं दिया दानव को अभय दे दिया, और मैं दानव भी बड़ा खुश हो गया। तो भगवान ने उनको कहा कि एक काम करो, इंद्रप्रस्थ में ऐसी एक सभा बनाओ जो बड़ी मायावी हो, जहाँ पर जल जो है ऐसा दिखाई पड़े कि जमीन है, और जमीन दिखाई पड़े ऐसे कि जल है। और ऐसे एक तो मैंने आपको खाली एक ही बताया चीज़, ऐसे अद्भुत चीज़ें कहीं आईने ऐसे लगता है कि मिलो दूर जगह है यहाँ पर, लेकिन जाएंगे तो टकरा देंगे। उधर कहीं लगेगा आपको कि कुछ ट्रांसपेरेंट है, और आगे जाएंगे तो सीधा दीवार पर टकराएंगे। और कहीं लगेगा बंद है, वहाँ पर आप आगे जा ही सकते हो। मतलब इट्स लाइक आपको लगता है कि यहाँ पर दीवार है, लेकिन आगे जाएंगे तो जाते रहेंगे आप अंदर से। आपको लगेगा अगर ये तो खुला दरवाजा है। इस तरह से बहुत दिव्य मायावी सभा बनाई, इसका नाम था मय सभा। ये मय सभा जो है अनेक कारणों में से एक कारण है महाभारत के युद्ध का क्योंकि दुर्योधन का बड़ा अपमान हो गया उधर। दुर्योधन बेचारा जमीन समझकर चलते रहा तो फौज में गिर गया वो, और ऊपर झरोखे में द्रौपदी खड़ी थी, वो एकदम सहज हंस पड़ी वो। अभी आप देखो इतना बड़ा आदमी योद्धा वैसे फिसल जाता है, और एक औरत वहाँ पर हंसती है तो कितना बड़ा अपमान होता है उसका। वैसे दुश्मनी है पहले से, ऊपर से वो हंस पड़ी। फिर वो आगे जाकर इतना संभल के चलने लगा, अरे पता नहीं सारी जमीन पानी होगा, लेकिन वो पानी नहीं थी, वो जमीन थी तो हर जगह मतलब ही वॉज बिविल्डर्ड, एकदम कम्प्लीटली कन्फ्यूज हो गया था वो। जितना कन्फ्यूज ज़्यादा हुआ उतना उसका द्वेष बढ़ गया उनके प्रति। अरे इतना अद्भुत महल जो मेरे पास नहीं है, मेरे दुश्मनों के पास है। शकुनी के पास भी इतना जाके रोया, इतना उद्वेग व्यक्त किया उसने, कि शकुनी ने कहा चिंता मत करो, मैं उनको जब इंद्रप्रस्थ का उद्घाटन होगा ना गृह प्रवेश, तब गृह प्रवेश में हम सब जाएंगे वहाँ पर, और मैं उनको द्यूत क्रीड़ा खेलने में निमंत्रित करूँगा, फिर तब मैं सब द्यूत में सब जीत लूँगा और तुमको दे दूँगा। कितना कपटी विचार है देखो, है ना, सच अ लोली थिंकिंग। बाय द वे हमको लगता है कितना लोली थिंकिंग है दुर्योधन का, लेकिन हम भी ऐसा सोचते हैं, प्लीज़ अंडरस्टैंड। हाँ हम भी अपने भौतिक जीवन में यही सोचते रहते हैं कि पड़ोसी का, मित्र का, बड़े भाई का, छोटे बहन का ऐसा ऐसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, मैं सबको उल्लू बनाऊंगा, साइन करके सब प्रॉपर्टी ले लूँगा मेरे नाम पर। अच्छे अच्छे लोग करते हैं सब ये बात, अच्छे अच्छे लोग गलत साइन करके माता पिता की प्रॉपर्टी हड़प कर लेते हैं। तो हमारे मन में जब तक हम कृष्ण के भक्त नहीं हैं, ये दुर्योधन छुपा हुआ है। जितना हम भजन छोड़ देते हैं उतना सारा ऊपर निकलता है वो, जितना भजन करते हो तो वो दब जाता है। तो ये गुड डॉग एंड बैड डॉग हमारे गुरुदेव बताते हैं, अच्छा कुत्ता और बुरा कुत्ता दोनों एक ही जगह बैठे हुए हैं। क्या बोलते हैं कलयुग में, राक्षस और देवता एक ही हृदय में बसे हुए हैं। द्वापर में दो देश में हैं, त्रेता में दो, क्या नहीं, द्वापर में एक फैमिली में है, कली में एक एक हृदय के अंदर है, द्वापर में एक फैमिली के अंदर है, भाई भाई कजिन ब्रदर्स राक्षस और देवता। और त्रेता में दो देश में है, एक अयोध्या में एक लंका में। और सत्ययुग में दो प्लैनेट में है, एक एक लोक में है देवता लोक में, एक राक्षस लोक में। तो क्या बोलते हैं ना, लेट अस कम क्लोजर, जैसे समय बीतता है तो बहुत पास पास आते रहते कलयुग में तो क्लोजेस्ट एकदम एक ही हृदय में बसे हुए, कब कौन से कुत्ता भोंकता है समझ में नहीं आता है। हमको लगता है कि अच्छा कुत्ता भोंक रहा है, लेकिन एक्चुअली वही राक्षस कुत्ता भोंक रहा है। तो अगर हमको अच्छे कुत्ते को अंदर मजबूती देनी है तो क्या करना होगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बुरा कुत्ता जो है कुपोषित हो जाता है और अच्छा कुत्ता को पोषण मिल जाता है। तो एक दिन संभावना है कि बुरा कुत्ता मर जाएगा और अच्छा कुत्ता हमें आगे लेके जाएगा। एनीवे ये तो ये उपमा अलंकार है, एग्जाम्पल दिया जा रहा है, उदाहरण। तो ये दुर्योधन वहाँ पर बड़ा दुखी हो गया था। तो इंद्रप्रस्थ का निर्माण हुआ, मय सभा का निर्माण हुआ, फिर लौट के आए, फिर भगवान यमुना जी को लेकर रथ में बैठकर द्वारका में चले गए। उसके कुछ समय बाद भगवान अवंतीपुर गए। अवंतीपुर में जो राजा थे विंद और अनुविंद, ये दुर्योधन के पक्ष में उनके मित्र थे। तो इनकी कन्या थी मित्रविंदा। मित्रविंदा का हृदय जो है वो कृष्ण पर आ गया था कि मैं कृष्ण को विवाह करूंगी, लेकिन अनुविंद और मित्र अनुविंद और विंद को इच्छा थी कि नहीं, ये कृष्ण को नहीं देना चाहिए। अवंतीपुर यानी आज का उज्जैन, हाँ उज्जैन, जहाँ पर भगवान गुरुकुल में गए थे संदीपनी मुनि के आश्रम में। तो ये जो मित्रविंदा थी, हु इज द डॉटर ऑफ हिज आंट, इसका मतलब क्या हुआ दोबारा पढ़ता हूँ यहाँ पर। When it was time for their daughter Swayambar, they forbade her to select Krishna. वो स्वयंवर में खड़ी थी लेकिन कृष्ण को उन्होंने बता दिया था कि कृष्ण को वरना नहीं आपको, लेकिन मित्रविंदा की तो इच्छा कृष्ण को वरने की थी। कृष्ण भगवान पे स्वयंवर में प्रकट हो गए और कृष्ण भगवान उनके आत्या यानी कि बुआ की लड़की थी। ये जो अनुविंद में है ना, सब लोग भाई है, देखो आप महाभारत पढ़ेंगे ना, सब लोग भाई भाई है, एवरीबडी इज रिलेटेड, इस पक्ष में उस पक्ष में सब लोग कहीं ना कहीं उनका रिश्ता है, कोई कजिन ब्रदर है, कोई कजिन कजिन थर्ड कजिन है, कोई चाचा है मामा है, कोई मदरराज शल्य है, ये सब लोग रिश्तेदार हैं उनके। तो ये जो मित्रविंदा थी, ये भगवान, ये जो अनुविंद और उनकी पत्नी जो थी वो कुंती की बहन थी। तो ये कृष्ण की वो बुआ की लड़की हो गई। तो कृष्ण भगवान स्वयंवर में आए, सबके सामने ज़बरदस्ती उसको उठा कर ले गए। हाँ, पहला विवाह भी ऐसा ही किया था और बाद में पांचवा विवाह भी ऐसा ही किया। इसको क्या है ना, राक्षस विवाह कहते हैं। कई प्रकार के विवाह बताए गए हैं। एक है आजकल का होता है ना कोर्ट मैरिज, वो गंधर्व विवाह है, मतलब कहीं भी मिलना आपको एक दूसरे को माला पहनाना हो गया मैरिज, इसको गंधर्व विवाह कहते हैं। राक्षस विवाह मतलब क्या, अपने पसंद की लड़की जहां भी दिखेगी उसको उठा कर ले जाना है, बलपूर्वक शौर्यपूर्वक। हाँ, उसको भी जायज़ बताया गया है, बोनाफाइड उतना, लेकिन बल होना चाहिए। अगर किसी को उठा के ले गए आप और सब जनता आपको हमला कर रही है तो उनका सामना करने का भी बल होना चाहिए, सबको परास्त करना चाहिए, तब वो विवाह जो है वो जायज़ बना जाता है। समझो आप किसी को उठा के उठा रहे हो, उठा ले लिया और दो लोगों ने आक्रमण किया, आपको परास्त कर दिया, लड़की को वापस ले लिया, तो मैरिज कैंसिल। तो राक्षसी विवाह करने के लिए भी बल होना चाहिए। और रुक्मिणी ने बताया था राक्षसी विवाह करना मुझे उठा के ले जाना, दिस इज द लास्ट रिसॉर्ट। हाँ, अगर जायज़ मार्ग से उनका विवाह होने की संभावना थी तो वो ऐसा नहीं कहती थी, लेकिन जब पता था कि ऐसा होने वाला नहीं है, ये अलग प्रकार से करना होगा। तो इस तरह से मित्रविंदा को विंद अनुविंद की सभा से स्वयंवर से उठाकर भगवान ले जाए। कितने विवाह हुए, 1, 2, 3, 4 और 5। फिर आप जानते हैं ना कौशल्या देवी, कौशल्या देवी राम की माता थी, वो कोसल देश की थी। तो कोसल देश में उस समय जो राजा थे उनका नाम था नग्नजीत। ये तो पीढ़ियाँ है ना, जैसे त्रेतायुग समाप्त हो गया, भगवान राम की लीला समाप्त हो गई, लेकिन कोसल देश तो वही है। तो उनके वंशज हैं राजा नग्नजीत। राजा नग्नजीत की लड़की थी, उनका नाम था सत्या। उसका और एक भी नाम था, उसका नाम था नग्नजीती, क्योंकि वो नग्नजीत राजा की लड़की थी। तो इनका विवाह जो भगवान के साथ में हुआ, बड़ा अद्भुत तरीके से हुआ। सत्या के पिताजी नग्नजीत ने ये ऐसा प्रण किया था कि मेरे कन्या का जो वर होगा उसको उन 7 बैलों को नियंत्रण में लाना होगा जो बहुत खूंखार थे। वो ऐसे बैल थे जिनको किसी भी योद्धा का जो गंध है ना वो भी सहन होता नहीं था। हम देखते हैं ना वो टीवी पर कभी कभी, वो लाल कपड़ा दिखाते हैं बैल को, है ना, तो लाल कपड़ा देखते ही बैल को पता नहीं क्या हो जाता है, एकदम बेफाम हो जाता है वो। तो ऐसा भयंकर गेम लोग खेलते हैं। हाँ, तो वैसे ये बैलों को ऐसा स्वभाव था उनका कि किसी भी पुरुष, किसी भी योद्धा, किसी भी व्यक्ति का स्मेल जो है ना उनको सहन नहीं होता था, और उसको खदेड़ देते थे वो, उनके सामने कोई आया तो खदेड़ देते थे उसको। तो उनका ऐसा वर चाहिए था कि वो सातों बैलों को एक साथ में जो कंट्रोल में करेगा, मतलब इंग्लिश में कहते हैं ही दे विल बी टेम्ड बाय वन पर्सन एट वन टाइम, एक अखाड़े में एक साथ सात बैलों को कंट्रोल में लाना है, उसको मैं मेरी कन्या का विवाह कराऊंगा। भगवान पहुंच गए उधर कौशल देश में और उनका स्वागत किया गया, पूजन किया गया उनका। भगवान बड़े चतुर हैं, उनका सब पूजन स्वीकार किया और बोलते हैं कि मैं तुम्हारी कन्या का विवाह करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, लेकिन वैसे क्षत्रियों को भिक्षा नहीं मांगना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी आपसे बोल रहा हूँ कि मुझे आपकी कन्या चाहिए और मैं ये प्रण वण कुछ करने वाला नहीं हूँ, मुझे ऐसे ही कन्या दे दो। क्या हर बार क्या अपना कौशल दिखाना है, कुछ उस बार तो ऐसे भी ले सकते हैं ना। तो राजा कहता है कि हे नारायण भगवान, आप तो पृथ्वी के नियंत्रक हो, आप तो अपने आप में परिपूर्ण हो, मैं तो आपके सामने बहुत तुच्छ हूँ। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, मैं आपकी कन्या का हाथ मांगता हूँ, आप तो मेरे मित्र है ही, तो मित्र की कन्या को मांगना कोई दोष नहीं है, तो कृपा करके मैं आपको कोई गिफ्ट विफ्ट देने वाला नहीं हूँ, दक्षिणा को देने वाला नहीं हूँ, आप मुझे कन्या दे दीजिए। लेकिन राजा जो थे वो बहुत निश्चयी थे, उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि मैंने बहुत दिन से ये प्रण बना के रखा है और गड़बड़ ऐसा है कि कई लोग आके ट्राई कर चुके हैं। जब लोग जितने भी ट्राई किया है ये प्रण में, उन्होंने अपनी हड्डियाँ को टूटा हुआ पाया है, दे हैव फाउंड देयर बोन्स ब्रोकन। कुछ लोगों को तो ये बैलों ने पूरा ऐसा चटनी बना दिया उनका पूरा। तो फिर अभी समझो आपको मैंने बिना प्रण के देते तो उनको क्या लगेगा, अरे तुमने हमारे लिए तो प्रण रखा था, जब तुम्हारी इच्छा वाला वर आ गया तो पूरा प्रण कैंसिल कर दिया, तो लोग मुझे आक्रमण करेंगे, मेरे ऊपर राज्य की शांति नष्ट हो जाएगी, व्याज युद्ध में बदल जाएगा, तो आई एम वेरी सॉरी लेकिन आपको ये प्रण पूरा करना होगा। यह तो लिखा है देखो, इट इज इम्पॉसिबल टू सबड्यू एंड दे ऑलरेडी हैव डिफीटेड मेनी प्रिंसेस ब्रेकिंग देयर लिम्स इनटू पल्प्स। अगर आप उनको कंट्रोल में लाओगे तो मेरा भी प्राण बच जाएगा, क्योंकि तो राजा के लिए ना कैसा है ना, जो राजा है ना वो आदरणीय व्यक्ति होता है, उसको आदर्श व्यवहार करना पड़ता है और उसके लिए अपनी इज्जत जो है ना, वो उसकी डिग्निटी, जो मान सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बोलेंगे देखो क्या, कभी ये रूल कभी वो रूल, जब चाहे तभी अपना रूल, जब चाहे तभी कैंसिल रूल, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भगवान फिर मान गए, समझ गए कि ये व्यक्ति मानने वाला नहीं है, मैंने इनको समझाया, कोशिश किया लेकिन फिर भी नहीं मान रहे, कोई बात नहीं। फिर भगवान ने अपना वो उत्तरीय वस्त्र निकाला, कमर में गांठ मारी, अखाड़े में उतर गए। अखाड़े में उतरने के बाद उन्होंने तुरंत सात रूप धारण कर लिए। ये सात रूप धारण करना आचार्य बताते हैं हमारे कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि उसके पहले भगवान ऑलरेडी पांच विवाह कर चुके थे, तो सत्या का जो दिल भगवान के ऊपर पहले से ही था, लेकिन वो मन ही मन में सोच रही थी कि पांच तो ऑलरेडी है, मैं तो छठवीं हूं, मेरे को इतना टाइम मिलेगा, है ना, आई डोंट माइंड बिकमिंग द सिक्स वाइफ, मैं छठवीं पत्नी बनने को तैयार हूं। लेकिन फिर जैसे द्रौपदी ने एक साल पांच हिस्से में बांट दिए थे और कुछ समय युधिष्ठिर, कुछ समय भीमसेन, ऐसा उनका अंडरस्टैंडिंग था, तो मेरा क्या होगा, कैसे होगा, मतलब ये सोच रही थी वो। तो भगवान ने सात रूप में अपने आप को विभाजित करके ये साबित कर दिया, डोंट वरी, सारा समय आपके लिए है, ऐसा नहीं कि आपके लिए कम समय, इनके लिए ज़्यादा समय, वो पटरानी उनके लिए ज़्यादा समय, हाँ साल में से ज़्यादा हिस्सा रुक्मिणी को, कम हिस्सा मुझे, क्योंकि मैं बाद वाली हूँ, मैं इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। भगवान ने कहा 360 दिन पूरे आपके, मैं आप ही के संग रहूँगा। और सात रूप में उन्होंने जैसे कोई बच्चा खिलौने से खेलता है वैसे उन्हें सात बैलों को कुछ ही क्षणों में ऐसे बांध दिया कि जैसे गाय बन गई हो, बकरी बन गई। फिर सात रूप में उनको कंट्रोल में किया और एक डोरी सबको सात के नाक में डाल दी, वन बाय वन ऐसे, और फिर एक हो गए वो सात के, और फिर एक कृष्ण जो है वो सात बैलों को एक डोरी से नाकों से बांध कर ऐसे गोगल गाय बनकर लेके आए। सत्या बड़ी खुश हो गई, सत्या तुरंत माला लेकर नीचे आई और भगवान को उन्होंने माला पहनाया। तो नग्न जी बड़े खुश हो गए, उन्होंने कहा कि आखिर में मुझे सात बैलों को नियंत्रण करने वाला जमाई मिल गया। उसने बड़ा सुंदरता से उनका विवाह किया। उसने क्या क्या दिया देखो, दहेज में खाली सुन लो खाली, हाँ जिन लोगों को कन्याएं हैं विवाहित करने वाली, वो कहते हैं कि ये सुनेंगे ना आप तो आपको इतना पुण्य मिलेगा कि आपकी कन्याओं का विवाह हो जाएगा अच्छी तरह से, डोंट वरी। ऐसा कृष्ण भगवान की विवाह जब सुनते ना हम तो ये बहुत पवित्रकारी चरित्र है उनका, सब चिंताएं मिट जाती है। हाँ, किसी की कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, किसी को लड़के के विवाह नहीं हो रहा है, बहुत उम्र हो गई है, दाढ़ी भी सफ़ेद हो रही है। हाँ, लेकिन भगवान के विवाह की कथा सुनने पर दो चीज़ें होती हैं, एक तो पवित्रता उत्पन्न होती है, दूसरी सारी चिंताएं जो हमारी विवाह के विषय में सब नष्ट हो जाती है। अल्टीमेटली कृष्णा इज द कंट्रोलर, भगवान नियंत्रक हैं, जब उनकी मर्जी होगी सब अच्छा होगा। तो उन्होंने क्या क्या दिया दहेज में, 10,000 गाय दिया। बाय द वे जब भी गाय दान देते हैं ना कोई राजा लोग, तो उनके सिंग में सोने की कैप पहनते हैं, पैरों में चांदी के घुंघरू पहनते हैं, पूंछ में भी चांदी के घुंघरू सोने के घुंघरू पहनते हैं, गले में सोने की घंटा पहनते हैं, और सिल्क की एम्ब्रॉयडरी की हुई शाल पहनते हैं उनके ऊपर, और फूलों की माला पहनते हैं, क्या क्या करते हैं, अलंकार पहनते हैं उनको। और ऐसे अलंकार से विभूषित गायें जितनी भी है, 10 है, 100 है, 1,000 है, 10,000 है, 10,00,000 है, सब ऐसे ही होती है। 10,000 गाय दिया उन्होंने, 300 सेविकाएं दिया। अभी सेविकाएं कैसे होती है, वो भी अलंकार से लदी हुई होती है। अगर किसी राजा की सेविका के रूप में दहेज में जा रही है तो उसको भी सिल्क के वस्त्र होते हैं। और रुक्मिणी जब आई थी ना, तो रुक्मिणी के पिताजी पहले नाराज़ थे कि भाई ऐसे नहीं होना चाहिए था, युद्ध वुद्ध होना नहीं चाहिए था, वो छीन के लेके गए। बाद में जब मान गए वो तो दहेज लेकर गए, तो ऐसे कहते हैं कि उन्होंने कई लाखों दासियां रुक्मिणी के साथ दी थी। और ऐसा वर्णन भागवत में आता है कि एक एक दासी रुक्मिणी के बराबर सुंदर थी, और रुक्मिणी इतने अलंकार पहनती थी वो, इमेजिन। दासियां मतलब ऐसा नहीं कि वो बर्तन मांजने वाली, हाँ, वेरी ब्यूटिफुल कन्याएं हुआ करती थी वो। तो 3,000 दासियां, 9,000 हाथी। हाथी का मतलब क्या होता है, आप कभी गुरुवार गए, गुरुवायूर कितने लोग गए गुरुवायूर, वो गुरुवायूर के देखा आपने हाथी के मुंह के ऊपर ऐसा दागिना होता है, ऐसा बड़ा सॉलिड गोल्ड का होता है वो। तो ये सारे हाथी भी ऐसे दागिने से लदे हुए थे। हाँ, फिर 9,00,000 रथ दिए उन्होंने, 9,00,000 रथ कैसे ट्रांसपोर्ट किए होंगे, 9,00,000 रथ, 900,00,000 यानी कि 9 कोटि घोड़े, और 9 अब्ज सेवक, सेविकाएं 3,000, 9 अब्ज सेवक, 900 कोटि सेवक, और 9 कोटि घोड़े, और 90,000 रथ। इतना बड़ा दहेज दिया उन्होंने, और इसको भी एकदम बढ़िया दहेज नहीं मानते हैं। अब आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दहेज क्या होता है। इस तरह से बड़ी प्रेम से सत्या को उन्होंने अर्पण किया भगवान को, धूमधाम से विवाह किया, और भगवान सत्या को लेकर बड़े ही आराम से जा रहे थे। तो खबर फैल गई ना दुनिया में कि भगवान ने सत्या का हाथ जीत लिया, सात बैलों को कंट्रोल में ला लिया, और उसका प्रण जीत लिया उन्होंने। तो जिनके हाथ पैर टूटे थे उनको बड़ा गुस्सा आया, अरे हमने तो हाथ पैर तोड़ लिए, भगवान तो आराम से ले जा रहे हैं उनको। सबका द्वेष जागृत हो गया, सब लोग ने मिलकर आक्रमण किया उन पर। अपने अपने देश में थे वो, लेकिन फिर भी द्वेष ऐसी वस्तु है ना, वो जो मुझे चाहिए वो किसी और के मिल गया, ये मुझे नहीं मिलेगा तो चलेगा, उसको भी नहीं मिलना चाहिए। द्वेष का स्वभाव क्या होता है, आई डोंट गेट ऑल राइट बट यू शुड नॉट गेट इट। ये द्वेष का एक स्वरूप है। अपने देश में आराम से बैठे हुए, फ्रैक्चर मिक्चर हील हो गया उनका, प्लास्टर निकल गया, अभी सुना कि अभी कृष्ण लेके जा रहे हैं, तुरंत रथ में बैठकर सेना लेकर एक साथ में आक्रमण किया, ऑल फ्रस्ट्रेटेड सोल्स वर टुगेदर और भगवान ऐसे टर्न हो गए युद्ध करने के लिए. अर्जुन साथ में थे, बोला भगवान यू आर न्यूली मैरिड, यू एंजॉय, डोंट वरी, मैं हूं ना. फिर भगवान बोले ठीक है कोई बात नहीं, देख लेना मैं हूं पीछे खड़ा. अर्जुन ने अकेले ने सारे योद्धाओं को परास्त कर दिया और अर्जुन के गांडीव के भय से सभी योद्धा भाग गए वहां से. और भगवान देखते रहे, वाह अच्छा है मेरा भाई अर्जुन मित्र जो है बहुत बढ़िया है. उस तरह से भगवान अर्जुन के एक हाथी युद्ध विजय के पश्चात द्वारका लौटे और अपना दहेज भी ले गए, बड़े आनंद से रहने लगे. उसके बाद में एक और राजा थे, आप जानते हैं कैकेयी जो दशरथ की पत्नी थी, ये कैकेयी देश से थी, कैकेय इसलिए उसका नाम क्या था कैकेयी. आज ये देश कहाँ है पता है आपको? एनीबडी नोज? हाँ नहीं सर, अफगानिस्तान में गंदारी थी, रशिया, यस रशिया से थी वो. रशिया की स्त्रियाँ बहुत सुंदर होती हैं. हाँ और रशिया का नाम जो है ना वो भी कैसे पड़ा है पता है आपको? रूसीय देश, ऋषि लोग उतने ठंड में -45 में वहाँ जाकर तपस्या करते थे, इसलिए उसका नाम पड़ा था ऋषीय देश, जहाँ पर ऋषि जाकर तपस्या करते हैं. तो वहाँ की कैकेयी इसलिए बहुत सुंदर थी और इसलिए दशरथ का सबसे अधिक स्नेह था कैकेयी के ऊपर. ते हुए त्रेता युग की बात. उसी देश में अभी कौन मिल रहे हैं? श्रुतकीर्ति राजा जो कैकेयी के राजा थे, और वो भी भगवान के बुआ की लड़की थी, मतलब कैकेयी राजा की पत्नी थी वो भगवान की बुआ थी. तो यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे ही गए श्रुतकीर्ति ने बड़े ही प्रेम से, मतलब श्रुतकीर्ति ने और उनके दो लड़के थे, दो बच्चे थे उनके पुत्र थे, उन्होंने प्रेम से आकर भगवान को भद्रा देवी का हाथ सौंप दिया. भद्रा देवी वो कैकेयी राज की कन्या थी. तो भद्रा देवी कितनी नंबर की पत्नी हो गई भगवान की? हाँ रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, यमुना, नग्नजीति और हो गया ना सत्या, नग्नजीति सत्या एक ही है, छह हो गए, छह है ना कि सात हो गए? मैं सर देख रहा हूं आप जग रहे हैं कि सो रहे हैं. तो इसके बाद में भगवान मद्र देश में गए. मद्र देश कहां पर है? मद्रास, चेन्नई, तमिलनाडु. तो वैरायटी होना चाहिए ना, एक साउथ इंडियन डोसा वाली, एक पंजाबी पराठा वाली, एक बिहार लस्सी वाली, क्यों होना चाहिए कि नहीं चाहिए? सब वैरायटी एक घर पे होना चाहिए, इसलिए भगवान ने सब भ्रमण करके एक एक पत्नी लेके आए भगवान. तो अभी वो मद्र देश में गए तो वहां पर स्वयंवर रख रहा था, और ये स्वयंवर बड़ा अद्भुत था, बड़ा अद्भुत स्वयंवर था. ये कैसे था? जैसे अर्जुन का द्रौपदी के लिए प्रण बनाया था ना, मत्स्य का लक्ष्य भेद, वो मत्स्य ऐसा घूम रहा है ऊपर, ऐसे घूम रहा है, उसको हौद में देखना है और हौद में देखते हुए उसका छेद करना है, ऐसा अद्भुत था. आवाज़ का लक्ष्य भेद एक चीज़ है, मतलब आवाज़ सुनकर उसको बाण मारना, ये दृष्टि का लक्ष्य भेद. घूमते हुए मत्स्य को नहीं मारना है, मत्स्य की आँख को मारना है, छेद करना है उसका. तो द्रौपदी वाले यंत्र में इसमें क्या अंतर था? द्रौपदी वाला यंत्र ऊपर से जो घूम रहा था ना मत्स्य, वो खुला था, और ये वाले में बंद था. वो मतलब आप देखेंगे तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, कैसा एक ड्रम दिखेगा और ड्रम के अंदर वो घूम रहा है, लेकिन जब जल में देखेंगे तो वो मछली घूमते हुए आपको दिखेगी. मतलब अर्जुन से भी अधिक कठिन था ये प्रण. तो इसमें बहुत बड़े बड़े महारथी आए थे, भीमसेन, जरासंध, हाँ और अर्जुन भी थे उसके अंदर, शिशुपाल भी था, दंतवक्र भी था. तो कहते हैं कि वो धनुष जो था ना उठो, तो उसको तो कई लोग उठा ही नहीं पाए, उठते उठते गिर गए, लोगों ने हा 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 करके हंसे, फिर शर्मिंदा होकर बैठ गए. फिर कुछ लोग आए, उन्होंने धनुष तो उठाया लेकिन जो डोरी उठाकर खींच के लगाते लगाते वो टोंग करके हाथ से छूट गया, तो उसके झटके से वो नीचे गिर गए. होता है ना रबर, अभी रबर का भी खींचते हैं ना हम लोग, खींचते खींचते छूट जाता हाथ में से, तो उसका झटका अपना हाथ के लगता है। उस तरह से वो धनुष जो था उसको, वो स्ट्रेट था, उसको खींच कर जब दोरी लगाने गए तो छूट गया हाथ से, वो सटक गया, तो उसका इतना बड़ा प्रहार हो गया कि वो दूर फेंके गए सब लोग। फिर दुर्दबारा से फिर भीमसेन ने उसका बाण उठाया, प्रत्यंच लगाया, लेकिन बाण का भेद नहीं कर सके। जरासंध ने आया, उसको नहीं वो उठाया, दोरी लगाया, उसको प्रत्यंच लगाया, एम लगाया, लेकिन कहीं और चला गया। ऐसे बड़े बड़े योद्धा धीरे धीरे करके आ रहे हैं, सब हार गए। उसके बाद में अर्जुन आए, अर्जुन ने उसी स्टाइल में धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाया, जल में देखते हुए एम लगाया, भगवान की याद किया, अब क्या होगा। बाण जो था वो केवल मछली को चाट के चला गया, लेकिन मछली का भेद नहीं कर पाया। उसके बाद उसने भगवान को प्रणाम किया और बैठ गए वो। फिर कोई नहीं बचा, फिर सब लोगों ने भगवान को देखा, भगवान आए, उन्होंने धनुष उठाया, बड़े प्रेम से, बड़ी सहजता से सबको देखा, सबने जय जयकार किया भगवान का, धनुष लिया, प्रत्यंचा चढ़ाया, और एक क्षण के अंदर जो बाहर से दिखाई नहीं पड़ रहा है, जल में देखकर उनके आंखों का छेद किया। वो यंत्र इतने बड़े आवाज से टूट कर गिर गया, कहते हैं वो ध्वनि जो थी वो 14 लोक में पहुंच गई, और जितने भगवान के दुश्मन थे उनके हृदय में थरकाप हो गया। भगवान ने जानबूझ के ऐसे आवाज करने वाला लक्ष्य भेद किया, ये दिखाने के लिए, अपने शत्रुओं को डराने के लिए उन्होंने ऐसा किया एक ही साथ में। अभी भगवान के हाथ में सब कुछ है, वो बिना आवाज का भी उसको मार सकते थे, लेकिन भगवान ने जानबूझ के बहुत भयंकर ध्वनि के साथ में उसका लक्ष्य भेद किया। और फिर लक्ष्मणा ने भगवान को फूलों की माला नहीं पहनाई, भगवान ने, भगवान को उसने सोने की बनी हुई, रत्नों से मढ़ी हुई नेकलेस पहनाई, और बड़े आनंदित होकर वो भगवान को उसने स्वयंवर की माला पहनाई। तो ये कथा जो है ना वो विस्तार रूप में कब आती है, तब आती है जब भगवान कुरुक्षेत्र गए थे महाभारत युद्ध के पहले, और समंत पंचक नाम के 5 सरोवर में वो स्नान करने जा रहे थे। वो स्नानवान किया उन्होंने सूर्य ग्रहण के समय, और उस समय कुरुक्षेत्र के, द्वारका के, हस्तिनापुर के सभी लोग आए थे उधर, वृंदावन से भी आए थे, नंद बाबा, यशोदा माई, गोपी, ग्वाल बाल, सब लोग आए थे उधर। तो सब ने सबके साथ मुलाकात किया। तब द्रौपदी भगवान के रानियों को मिलने गई, और उन्होंने अपना संवाद किया कि आपका कैसे कैसे विवाह हो गया। तो सब रानियों ने, ये तो वर्णन जो मैं कर रहा हूँ वो सुखदेव जी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, इनका ऐसे ऐसे विवाह हो गया। लेकिन अगले अध्याय में आगे आप पढ़ेंगे दशम संध के अगले अध्याय में, तो स्वयं रानियाँ उनका विवाह कैसा हुआ वो बता रही है। तो लक्ष्मणा ने विस्तार रूप में अपना विवाह का वर्णन द्रौपदी को सुनाया, और ये भी सुनाया कि तुम्हारे विवाह में कैसा था, मेरे विवाह में कैसा था, वैसा ही था, डिफरेंस ये था कि उसके अंदर बंद था, तुम्हारे इसमें खुला था। फिर भगवान कैसे एकदम आकर्षक तरीके से आए और उन्होंने लक्ष्य भेद कर दिया, तो मैं बड़ी खुश हो गई। लेकिन आप वो अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि सभी राजकुमारियों ने, भगवान ने उनको जीतने के बाद या विवाह करने के बाद में यही कहा कि उन्होंने मुझे दासी के रूप में स्वीकार किया, ये मेरा अहोभाग्य है। ये नहीं कहा कि मैं उनकी पत्नी बन गई, मैं श्री कृष्ण पत्नी, हाँ क्या कहते हैं उसको, रानी बन गई, ऐसा नहीं बताया। हर एक रानी ने एक ही बात बताई, और ऐसा नहीं कि नई नई शादी थे तो अच्छा अच्छा मूड था उनका, शादी करके बहुत समय हो गया था, फिर भी उनका दास्य भाव जो भगवान के प्रति था, भगवान उनको पत्नी के रूप में देखते थे, लेकिन वो यही समझते थे कि मैं भगवान की दासी हूँ। उन्होंने मैं दासी करके स्वीकार किया, ये मेरे जीवन का परम भाग्य है। अभी कितनी पत्नियाँ हो गई, 8 हो गई ना, ओके वेरी गुड। तो 8 जो कन्याएं भगवान की पत्नी बन गई, वो प्रमुख अष्टपत्नियां हैं, स्पेशल क्वींस, पटरानियां हैं भगवान की, उसमें प्रधान रुक्मिणी देवी हैं। और ऐसे क्या लिखा है भागवत में, और जीव गोस्वामी लिखते हैं गोपाल चंपू में, कि भगवान जब ब्रज छोड़ के गए तो भगवान को गोपियों के बिना रहना नामुमकिन था। तो ये राधा रानी और गोपियाँ स्वयं दूसरा रूप लेकर रुक्मिणी, सत्यभामा, लक्ष्मणा, ये सब बने, वो उनका ही अंश थे। इसलिए भगवान का भी जो विरह था गोपियों का, वो भी कुछ हद तक शांत हो गया, क्योंकि वो उनका ही स्वरूप थे। इसके बाद में भगवान प्राग ज्योतिषपुर गए। वो किधर है पता है आपको? प्राग ज्योतिषपुर वो मेरे ख्याल से आसाम में है, आसाम, आई मे बी रॉन्ग, बट वो बहुत ईशान्य दिशा में है, जहाँ पर नागालैंड मेघालय राज्य है ना, उसमें से एक राज्य है प्राग ज्योतिषपुर। ये नरकासुर का राज्य था। नरकासुर का इतिहास किसको पता है? नरकासुर भगवान के पुत्र थे। डू यू एग्री विद मी? कभी हुआ उनको जन्म? कभी हुआ? जब हिरण्याक्ष ने लात मारकर पृथ्वी को, भूमि देवी को सागर में फेंक दिया था, तो भगवान ने वराह देव का अवतार लिया था। वो जल में छलांग लगाकर नीचे गटर में जाकर पृथ्वी को उन्होंने उठाया था और जल के बाहर ले गए थे, और जल के बाहर लाकर अपनी कक्षा में रखा था। तो जब वराह देव का पृथ्वी के साथ में, भूमि देवी के साथ में संबंध हुआ जाते वक्त, उस समय एक पुत्र हुआ, उसका नाम था भौम, भूमि का पुत्र भौम। तो ये भौम बना, कितना दिव्य था वो। देखिए भगवान और भगवान की जो सखी है देवी, भूमि देवी एक पत्नी है भगवान की, वो भूदेवी श्रीदेवी। आप जाएंगे ना साउथ इंडिया में तो सब जगह पर भूदेवी श्रीदेवी का भगवान के साथ में दर्शन है, भगवान की पटरानी है वो। तो भूमि देवी के साथ में संबंध होने के बाद भौमासुर का, भौम का जन्म हुआ। लेकिन आगे जाकर भौम ने बाणासुर के साथ संग किया, असुर का संग किया, तो वो भी भौम का भौमासुर बन गया। उसी का दूसरा नाम नरकासुर है, वही व्यक्ति है वो। तो भगवान का बालक बनकर या भगवान का मित्र बनकर या भगवान का बेटा बनकर कुछ नहीं होता, संग अच्छा होना चाहिए। भगवान का बालक बनने के बाद संग भी अच्छा रहेगा तो भगवान के बालक बने रहेंगे आप। लेकिन भगवान के बालक पुत्र, स्वयं भगवान के पुत्र होने पर भी अगर राक्षस का संग होता है तो वो राक्षस ही बन जाता है, और भगवान फिर उसको मारने को आगे पीछे देखते नहीं हैं। भगवान ने यही सिद्ध किया यहाँ पर, चाहे आप मेरे बेटे हो लेकिन अगर असत्य के पक्ष में हो, असत्य का संग करते हो, दुराचार करते हो, तो तुम्हारा भी वध होना है और मैं खुद भी करूँगा, पीछे नहीं हटूँगा। भगवान ने साबित किया है कि मैं सत्य के पक्ष में हूँ, चाहे राक्षस भी अगर मेरा भक्त बनता है तो मैं उसकी रक्षा करूंगा। उसका उदाहरण क्या है? यस, विभीषण, रावण का भाई था वो। इतनी हिम्मत थी उसकी, रावण की लंका में रहते हुए भगवान का भजन करता था वो। कितनी हिम्मत थी, रावण के लंका के अंदर उसके झोपड़ी में शंख चक्र पद्म कदा के चिन्ह रहा करते थे। तुलसी का वृंदावन था और सब जगह राम 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 लिखा हुआ था अपने कुटी में। तो एक बार रावण को पता चला, अरे मेरे राज्य में रहते हुए राम का नाम लिख रहे हो, दुश्मन का नाम लिख रहे हो। तो विभीषण ने कहा, आपका तो नाम लिखा है, किधर रावण का, राम का नाम लिखा है? देखो क्या लिखा है, राम रावण मंदोदरी, आपका और भाभी का नाम लिखा है। और हनुमान जी जब आए तो ढूंढ रहे थे सीता को सब जगह पर, तभी ये राम 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 नाम सुन रहा, उन्होंने तुलसी वृंदावन का दर्शन किया, भगवान के चार चिन्हों का दर्शन किया, बड़े कुतूहल से अंदर गए तो विभीषण जी ध्यान लगाकर प्रभु राम का भजन कर रहे थे। भक्त निर्भय होता है, कोई आसक्ति नहीं होती उनको धन के ऊपर, पैसे के ऊपर कोई लालच नहीं होती है, इसलिए वो इतना निर्भय होकर भगवान का नाम लेते थे। कोई डर नहीं था मृत्यु का भी, इसीलिए वो रावण को सच्चा सलाह, सच्ची सलाह दे सके बिना हिचकिचाट। इसको मृत्यु का डर नहीं है, वही आपको सच्ची कड़वी हो या मीठी हो दे सकता है सलाह। इसलिए ऐसा मित्र रखा करो आप जो आपका हित चाहता है, आपको अच्छा लगेगा ये नहीं चाहता है, आपका हित चाहता है और हो सकता है वो आपको कड़वी सलाह दे तो आपको अच्छी नहीं लगेगी, जो रावण को अच्छी लगी नहीं, लेकिन दिया उन्होंने, रावण की लात खाई, लंका छोड़ के चले गए, लेकिन सत्य को पकड़ के रहे वो कि सत्य के मार्ग पे चलना है, चाहे मृत्यु भी हो जाए, चाहे अपमान हो जाए, चाहे देश के निष्कासित किया जाए, सत्य का पक्ष हमको नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य ही परम विजय होता है, सत्यम परम विजयते, सत्यम परम धीमहि, शास्त्र में लिखा है। तो ये विषय कहाँ से निकला कि राक्षस भी अगर भक्त बनता है तो भगवान उसको बचाते हैं, और पुत्र भी अगर राक्षस बनता है तो भगवान उसको मार देते हैं। तो सब लोगों ने कंप्लेंट किया कि नरकासुर ने, इंद्र भगवान आए, इंद्र आए ब्रह्मा जी को लेकर आए और भगवान को बताया, भगवान देखो ये जो नरकासुर है इसने, इंद्र ने कहा, मेरी माता के कुंडल चुराए, वरुण का सिंहासन चुराया, वायु की छतरी चुराई और सुमेरु पर्वत पर एक सुंदर उपवन है, वो उपवन को उखाड़ के ले गया वो। ऐसे भी हो सकता है? हाँ, आप किसी के घर में जाके गहना चुरा के लेके जाओगे, लेकिन आपकी बिल्डिंग को ही चुरा के ले जा सकता क्या उठाकर? घरों के साथ, फर्नीचर के साथ। तो बोला, जहाँ पर देवता लोग खेलते थे हम लोग, वो पूरा उपवन जो सुमेरु पर्वत के ऊपर था वो ले गया, वो पूरा उपवन ले गया। बड़ा अपमान होता है हमको, बड़ा दुख होता है हमको सुनकर ये, लेकिन हम कर नहीं सकते कुछ, इतना पावरफुल है वो, आप ही कुछ कर सकते हो। भगवान ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आपके माता के कुंडल इयर रिंग लौटा देते हैं, डोंट वरी। तो भगवान ने जाकर सेना लेकर आक्रमण किया। अब ये नरकासुर का ऐसा एक इतिहास है कि कंस भी वहां पर आया था दिग्विजय करने के लिए, लेकिन कंस इतना पराक्रमी था, उसका उसके पास में, नरकासुर के पास उस समय भी बकासुर, अघासुर, पुतना, बहुत सारे ऐसे भयंकर योद्धा उसके साथ में थे। तो भगवान कंस ने तो बकासुर अघासुर को ऐसा पटक के मार दिया, मतलब वध नहीं किया लेकिन ऐसा कचरा कर दिया उनका पूरा। तो उन्होंने पुतना को भेजा, तो कंस ने प्रणाम किया, बोले बहन हो तुम्हारी मेरी, मैं औरत से युद्ध नहीं करता। तो तीनों को मैत्री बना दिया। फिर नरकासुर आया, बोला कि मैं भी आपका फ्रेंड हूँ, क्यों फाइट करना है, वी आर ऑल फ्रॉम वन पार्टी, वी बिकम अलायंस टुगेदर। तो नरकासुर का युद्ध नहीं हुआ, लेकिन नरकासुर ने फ्रेंडशिप बना दिया कंस के साथ। तो ये जो नरकासुर थे, उसका जो कंट्री था ना, उसका प्रोटेक्शन जो था, सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही आधुनिक और तांत्रिक था। किधर वायर थे करंट वाले, किधर खाई थी, किधर अदृश्य कुछ कुछ वेपन्स थे, किधर हमारा जो था ना कैमरे, वैसे दृष्टि के लगने के लिए कुछ कुछ चीज़ें थी। बहुत भयंकर वायु के बना हुआ कुछ आवरण था, रसायन से बना हुआ आवरण था, धातु से बना हुआ आवरण था, इलेक्ट्रिक करंट का आवरण था, खाइयाँ थी बीच में। लेकिन भगवान ने अपने कौमुद की गदा और सुदर्शन चक्र से सारे आवरण काट दिए। और उस समय उसका एक असिस्टेंट था, बहुत ही भयंकर राक्षस था, उसका नाम था मूर। सुना है आपने मूर? भगवान का एक नाम है इसके ऊपर, क्या नाम है? मुरारी। मूर को मारने के बाद उनका नाम मुरारी पड़ा। तो ये मूर जो था ना, इतना भयंकर था कि जब भगवान का कौमुदकी गदा से और सुदर्शन चक्र से टूटे हुए कवचों का, सुरक्षा कवचों का आवाज आया ना, तो इसकी नींद खुल गई। बहुत भयंकर था वो। जब जगा ना तो उसने ऐसी गर्जना की कि सारे 14 लोक में हाहाकार मच गया, कि रेड, लाल आंखें, लाल मूछें, लाल बहती हुई जटाएं, ऐसे भयंकर रूप से वो, तो ऐसे कई पहाड़ों के समान उसका शरीर था, बहुत भयंकर बलवान था वो। उसने भगवान पर आक्रमण किया, तो भगवान ने अपना चक्र भेजकर उसका सर काट डाला। मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूँ, उनका भी बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन भगवान ने उनको आखिर में चक्र से उसका सर काट दिया। जब मूर गिरा तो इतना भयंकर ध्वनि हो गया, तो फिर नरकासुर ने अपने सेनाओं को भेजा भगवान पर आक्रमण करने, अपने पुत्रों को भेजा। तो भगवान ने अकेले ने तब पुत्रों को मार दिया, रथों को धराशायी कर दिया, ऐसे हाथी घोड़े और योद्धाओं का चिखल बना दिया, पूरा कीचड़ बना दिया। फिर नरकासुर बाहर निकला, उसने भगवान से भयंकर युद्ध किया। उसका युद्ध देखने के लिए आकाश में देवता इकट्ठा हो गए, क्योंकि ये नरकासुर ने इतना भय पैदा करके रखा था देवताओं में, देवताओं को उत्सुकता थी। लेकिन ना, देवताओं का एक फनी चीज़ है उसके अंदर जो बताना जरूरी है। वो ऐसे जब युद्ध होते थे ना, तो वो बादलों के पीछे छुपकर देखते थे युद्ध को। ये श्रद्धा का विषय है अल्टीमेटली। आपको अगर श्रद्धा है कि भगवान परम विजयी हैं, तो आप खुलकर देखेंगे उनका युद्ध क्या है। लेकिन उनको डर था, कहीं भगवान हार गए तो, और कहीं भगवान हार गए और जो भगवान को हरा रहा है उसने हमको खुले में देखे हुए देखा तो वो हमको भी मार डालेगा, इसलिए हम छुप छुप के देखेंगे। जब भगवान का विजय होने लगेगा तो बादल से बाहर आ जाएंगे, फिर फूल बरसाएंगे। हम सब लोग यहाँ पर यज्ञ करते हैं देवता बनने के लिए, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, आप याद रखना, देवता बनना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई गर्व की बात भी नहीं है, क्योंकि देवता लोग भी बहुत काम वासना में रहते हैं, बहुत द्वेष करते हैं, और डरपोक भी रहते हैं, काम भासना में भोग में लिप्त रहते हैं, इसलिए हमेशा इनसिक्योर रहते हैं। कोई पृथ्वी पर तपस्या करता है तो उनको टेंशन आता है इधर ऊपर, और कुछ फिर वो कोई मेनका कोई ऐसे अप्सरा को भेजते हैं उनका तपस्या भंग करने के लिए, वो डर रहता है कि कोई पृथ्वी पर कोई मनुष्य तपस्या करने लगेगा और भयंकर तपस्या में यशस्वी हो जाएगा तो हमको अपना कुर्सी खाली करना पड़ेगा, वो उसको मिलेगा। इसलिए वो उधर भोग लेते समय भी टेंशन में रहते हैं, कोई नीचे तो कोई तैयारी तो नहीं कर रहा है ऊपर आने की। तो ऐसे टेंशन वाले जीवन जीने का क्या मतलब? भक्त बनो, आराम से जियो, निश्चिंत होकर जियो, निष्काम बनकर जियो। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। अशांत कौन रहता है? जो भोग की कामना रखता है, जो मुक्ति की कामना रखता है, जो सिद्धि की कामना रखता है, जो भी कामना रखता है वो अशांत रहता है। लेकिन भक्त जो है वो किसी की कामना रखता नहीं है, वो निष्काम होता है, अतएव शांत, इसलिए वो शांत रहता है। तो देवताओं से भी भक्तों की पदवी जो है वो श्रेष्ठ मानी गई है। तो हमको तो बनना है तो बेस्ट बनना है ना, बीच में क्यों बनना है? बिकम द बेस्ट। और बेस्ट क्या है? भगवान का भक्त। और उससे भी एक बेस्ट है, पता है क्या है? भगवान का दास। ये दास जो पदवी है ना वो सबसे सर्वश्रेष्ठ होती है। जब आप भगवान के दास बनते हो तो भगवान भी आपका दास बनता है। हरे कृष्णा। इस तरह से भगवान ने नरकासुर का भी वध कर दिया। नरकासुर का वध करते ही भूमि देवी जो बड़े परेशान थी कि मेरा पुत्र है लेकिन कितना बेकार निकला ये, हाँ वराहदेव से मुझे पद प्राप्ति इसकी हुई थी लेकिन ये मेरे नाम पे कलंक हो गया ये। तो उसका एक पुत्र था भगदत्त, वो भी बड़ा भक्त था भगवान का, भूदेवी ने उसको अच्छी तरह से अपना संग दिया था, लेकिन पिताजी के अत्याचार और हाहाकार से और वो भी थोड़ा डरा हुआ था बेचारा। लेकिन जब पिताजी की मृत्यु हुई तो भूमि देवी इस पुत्र को लेकर भगवान के पास आई। भगवान को कहा कि देखो भगवान, मैं बड़ा लज्जित हूँ, मेरा पुत्र ऐसा निकला, आपने आज उसका वध कर दिया, पृथ्वी को भार हल्का कर दिया, मेरा भार हल्का कर दिया। ये उसका पुत्र है भगदत्त, ये आपका भक्त है, ये आपके चरणों में अपने जीवन को शरण करना चाहता है, मैं भी इसको आपके चरणों में अर्पण कर रही हूँ, उसको कृपा करके स्वीकार कर लीजिए, जैसे भी उसका उपयोग करना आगे आप उपयोग कर लीजिए। तो ये भगदत्त ने महाभारत के युद्ध में पांडवों के पक्ष में युद्ध किया है। आप महाभारत विस्तार में पढ़ेंगे तो आपको भगदत्त का उल्लेख आएगा, बहुत बड़ा वीर था ये। फिर भूमि देवी ने उसके पुत्र नरकासुर ने छुपाए हुए जो चोरी किए हुए आभूषण थे ना, किसके किसके आभूषण थे उसमें? अदिति के कुंडल थे इंद्र की माता के, और वरुण देव का क्या था? वरुण देव का सिंहासन था। वायु का क्या था? हाँ छतरी छत्र। ये सब लेकर वो भगवान का अभिषेक करने आए थे गोवर्धन में। ये सब उनके राज्य की बेस्ट चीजें हैं। वरुण का सबसे बेस्ट सिंहासन है, वायु का सबसे बेस्ट छत्र है। तो ये सब लेकर उन्होंने भगवान को अभिषेक करने के लिए लेके आए थे इंद्र के आदेश के ऊपर। यही चीज नरकासुर चुरा के लेके गया था। तो भगवान ने ये सब लिया, और विशेष करके जब नरकासुर के साथ युद्ध करने के भगवान निकले तो सत्यभामा को साथ में लेकर निकले थे। वो सत्यभामा उनके रथ पर थी जब ये सब चल रहा था। इसके पीछे कारण है कि भगवान जानते थे कि मैं जब ये नरकासुर को परास्त करूंगा तो इसने चुराई हुई जो वस्तु है ना वो मुझे वापस लौटाने के लिए स्वर्ग लो जाना पड़ेगा, इंद्र के अमरावती जाना पड़ेगा। तो इसके पीछे एक रहस्य की बात ऐसी है कि नारद मुनि ने जानबूझकर एक बार रुक्मिणी को पारिजात का फूल लाके दिया। अभी क्या है ना, देना है तो 16,108 फूल लाने थे उनको, लेकिन एक ही लेके आए एक ही लाकर उसने रुक्मिणी को दिया। तो सत्यभामा बड़ी तिल बितल हो गई कि मुझे भी चाहिए वो। तो भगवान को याद था कि सत्यभामा बड़ी परेशान हो गई है। सत्यभामा ना ये राधा रानी का स्वरूप है, राधा रानी सत्यभामा बनी थी। तो ललिता देवी रुक्मिणी बनी थी। तो राधा रानी सत्यभामा बनी थी तो वो बड़ी चटपटी स्वभाव की थी, बहुत प्रेम करती थी भगवान से, ऐसा नहीं कि वो रियल में द्वेष करती थी, ऐसा नहीं था। लेकिन भगवान का उस पर और बाकी रानियों पर और प्रेम बढ़ता रहे इसलिए वो लीलाएं करते रहते थे। राधा रानी भी मान करती है ना भगवान के ऊपर, क्रोध करती है, लेकिन प्रेम बढ़ाने के लिए करती है। हाँ वो सच्चा हमारे ऐसा स्वार्थी और अहंकारपूर्ण प्रेम नहीं, क्रोध नहीं होता है वो। तो भगवान जानते थे कि जब मैं लौटूंगा स्वर्ग में तो इसको ले जाएंगे, तो उसको भी लेके जाएंगे, और एक फूल क्या पूरा पेड़ दे देंगे पारिजात का, नो प्रॉब्लम। तो इसलिए वो ये सब जब हुआ ना, भूमि देवी आई, सब लौटा दिया, तो भगवान जो है वो नरकासुर के महल में प्रवेश किया। उन्होंने नरकासुर के महल में प्रवेश किया तो जैसे अपना घर है वैसे गए वो, क्योंकि उनकी पत्नी भूमि देवी वहाँ पर थी। जाकर सिंहासन पर बैठ गए नरकासुर के, बिकॉज ही हैज वन एवरीथिंग ना, तो सारा उसका तिजोर लूट लिया भगवान ने। फिर क्या देखा कि उसके महल के कैद में 16,100 राजकन्याएं कैद में हैं। तो भगवान को देखा, सुंदर पुरुष को उन्होंने देखा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उनका हृदय मोहित हो गया भगवान को देखकर, शर्मा गई वो। लेकिन वो बड़ी क्या कहते हैं ना, कुपोषित, यानी कि देवर डिहाइड्रेटेड, माल नरिश्ड, बहुत दुखी थे, क्योंकि उसको ये जरासंध ने, ये नरकासुर ने उनको कैद करके रखा था। उसको कुछ ऐसा भयंकर यज्ञ करना था जिससे उसको एक भयंकर शक्ति प्राप्त करनी थी, और अविवाहित कन्याओं को उसमें यज्ञ में बलि देना था उसको, इसलिए उन्होंने सबको कैद करके रखा था। जहाँ जहाँ गया, राजाओं को हराया उसने, उसकी अविवाहित कन्या को उठा के अपने कैद में डाल दिया उसने। तो ये भगवान को पुकारती रही और भगवान उनको बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच गए। अब मैं जब द्वारकाधीश मंदिर में गया था सुबह, तो वहाँ पर एक पंडा जी एक समुदाय को ये कथा बता रहे थे। इतनी सुंदर कथा है, लोग सोचते हैं कि अरे क्या, कैसे भगवान है तुम्हारे, एक नहीं, दो नहीं, दस नहीं, आठ नहीं, 16,108, और वो भी उसके बाद में, उसके पहले तो जंगल में बीच रात में किसी के और के विवाह कन्या विवाह न करते हुए किसी के और की पत्नी के साथ डांस भी कर रहे हैं, कैसे भगवान है तुम्हारे। तो ये जो 16,100 लोगों के साथ विवाह किया उन्होंने, ये क्यों किया, क्योंकि वो जो मुक्त हो गए तो उन्होंने कहा कि ये तो आपने मुक्त तो कर दिया हमको, लेकिन हमारे साथ विवाह कौन करेगा। क्योंकि उस समय समाज में एक रिवाज था कि अगर कोई कन्या जिसका विवाह नहीं हुआ है वो अपने पति को घर छोड़कर एक रात भी कहीं और रहती है तो उसको भ्रष्ट बना देता, उसके साथ कोई विवाह नहीं करेगा। ये तो एक नहीं 16,100 है, अच्छे अच्छे कुल की कन्याएं हैं, राजकन्याएं, लेकिन वो कह रही है कि अब वापस जाएंगे तो घर वाले हमको रिजेक्ट करेंगे, ये दुनिया का समाज जो है वो हमको रिजेक्ट करेगा, हमको अछूत मानेंगे, हमको पतित मानेंगे, हमको भ्रष्ट मानेंगे, और हमारे साथ कोई विवाह नहीं करेगा, क्योंकि हम नरकासुर के घर में इतनी रातें हमने बिताई हैं, तो क्या होगा हमारा, हमारे लिए एक ही मार्ग बचेगा, आत्महत्या करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान ने देखा और विचार किया कि मैंने इनको रिहा तो किया, लेकिन मेरा उनका किया हुआ कल्याण अधूरा है, अगर मैं उनको छोड़ दूंगा ऐसे तो या तो कोई विवाह नहीं करेगा इनके साथ में, लेकिन जो गंदे पुरुष हैं इनका शोषण करेंगे, वर्ण संकर होगा, समाज दूषित होगा, और उसका कारण मैं होऊंगा। जब तक ये नरकासुर के कैद में थी तब तक सुरक्षित थी, एक दृष्टि से कलंकित नहीं थी, बाहर निकलेंगी तो दुष्ट पुरुष उनका उनको कलंकित करेंगे, समाज भ्रष्ट होगा, वर्ण संकर होगा, नंबर वन। या तो ये सारी कन्याएं आत्महत्या कर लेंगी और वो आत्महत्या का पाप मुझे लगेगा। तो भगवान को उन पर बड़ी करुणा आई, बड़ी दया आई उनको, और वैसे ही जैसे भगवान को उन्होंने देखा तो उन्होंने भगवान को वर लिया कि हमारे पति हो तो कितना अच्छा होगा, ऐसे उनके मन में भाव आया। तो भगवान ने फिर क्या किया, जितना भी लूटा हुआ सामान था ना युद्ध में नरकासुर के, वो सारे अलंकार जो है 16,100 कन्याओं को पहनाए उन्होंने, उनको सुंदर सुंदर जरी के वस्त्र दिए, और जैसे उनकी पत्नियां थी वैसे बना दिया उनको, 16,100 सोने की पालकियां मंगवाई, उतने चार चार नौकर मंगवाए उसको उठाने के लिए। ये सब सत्य मामा के सामने हो रहा है और रथ में बैठी हुई है और भगवान इनका उद्धार कर रहे हैं, और 16,100 कन्याओं को उनकी पत्नी योग्य श्रृंगार करके इत्मीनान से सम्मान के साथ में उन्होंने द्वारका भेज दिया। अरे आप द्वारका जाओ अब संदेश भेजता हूँ मैं, आप रहो आराम से, मैं लौट के आता हूँ स्वर्ग जाकर। और वो चले गए बड़ी इत्मीनान के साथ। तो ये मत समझना कि काम वासना के वजह से भगवान ने एक एक करके 16 और 108 पत्नियां इकट्ठा किया था। ये सब दया और करुणा और प्रेम का प्रभाव है। और इनका तो केवल करुणा ही करुणा थी। और फिर विश्वकर्मा को आदेश दिया, जब तक मैं लौट के आऊँगा तब तक 16,100 महल तैयार रखना इन सब लोगों के लिए। 8 महल तो पहले ही बन गए थे, हाँ, विशेष रूप के, जिसमें मैंने आपको वर्णन कर दिया उसका। 16,108 महल बनाने का ऑर्डर दे दिया और भगवान सत्यमामा को लेकर, इन वस्तुओं को लेकर स्वर्ग लोग चले गए। स्वर्ग लोग चले गए तो इंद्र ने उनका स्वागत किया, पैर धोए, गीत गाए, आरती किया, भोग लगाया, सब सत्कार किया उनका। तो भगवान ने इंद्र का सब सत्कार स्वीकार किया। इंद्र ने उनका भगवान के रूप में सत्कार किया कि भगवान आए हैं। फिर भगवान इंद्र को मिले, वो जो गार्डन था वो वापस दे दिया। वायुदेव आए, उनका छत्री वापस दे दिया। वरुण देव आए, उनका सिंहासन वापस कर दिया। इसमें बीच में भगवान ने कहा, सत्यभामा तुम जाकर इंद्र की माता को कुंडल लौटा के देना, क्योंकि ये औरतों का गहना है, आप देखिए आना। अभी देखिए देवता लोग कैसे होते हैं। हाँ, सत्यभामा ने बड़े प्रेम से नमस्कार करके आशीर्वाद दिया उनका और उनकी कुंडल लौटा दिया उनको, और कहा कि मुझे ना एक पारिजात का पेड़ चाहिए। मैंने सुना है कि इंद्र के नंदन वन में ऐसे बहुत सारे पारिजात के वृक्ष हैं, तो एक मुझे चाहिए। तो अदिति माँ, देखिए अदिति माँ, उनके कुंडल तो वापस ले लिया उसने। हाँ, ऊपर से ये बोलते ना, हम लोग क्या बोलते हैं, ओटी भरना बोलते हैं ना, वो सत्कार करते हैं ना सौभाग्यवती का, वो भी किया उसने उनका। उनको सब कुछ किया और क्या किया कि एक फूल निकाल के दिया पारिजात का और ओटी में दे दिया, उसके गोद में भर दिया। और क्या बोलती उनको, देखो आप लोग सब मानव लोग हो पृथ्वी के, ये जो पारिजात का फूल है ना, वो आपको मैं एक ही दे सकती हूँ, लेकिन ये पेड़ के आप योग्य नहीं हो क्योंकि आप मानव हो। आप सोच सकते हो कितना अहंकार होता है देवताओं को। अरे वो जो पारिजात का नंदन वन है किसने दिया आपको, भगवान ने दिया। और ये भगवान मानव वर्ग का लीला कर रहे हैं और भगवान की मानव लीला में ये जो पटरानियाँ हैं, भगवान की बड़ी विशेष भाग्यलक्ष्मी आए हैं, ये वैकुंठ वासिनी औरतें हैं, ये मानव का रूप धारण करके लीला कर रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है देवताओं को, ये इमेजिन दिस, ये समझ में नहीं आ रहा है। साक्षात भगवान का दर्शन कर रहे हैं, भगवान की भाग्यलक्ष्मी पत्नी का दर्शन कर रहे हैं, फिर भी उनका स्वर्ग का अहम भाव जो है वो नहीं छूट रहा है। ये जीव गोस्वामी समझाते हैं कि एक वृक्ष मांगा तो एक फूल दे दिया उन्होंने, तो उनको बड़ा बुरा लगा कि अरे मैं तो इतना दूर आई पेड़ मिलने के लिए। पति को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, अदिति माँ ने ऐसे ऐसे कहा, अभी क्या करेंगे। बोलो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, चलो वापस लौट के चले नंदनवन में आए। बोला हे प्रिय सत्यभामे, उठा लो जो अच्छा लगे उठा लो। तो उन्होंने एक पेड़ उठा लिया और उठाकर रथ में रख लिया। जैसे रखा, द्वारपाल बहुत चिल्लाए, अरे ए किसको पूछ रहे हो, हे आपको पूछने का अधिकार, किसने दिया आपको अधिकार, ये आप नहीं उठा सकते यहाँ पर। अभी कुछ समय पहले उनके ही राजा के दरबार में ये गए थे और सबके आंखों के सामने उनका सत्कार हुआ था भगवान के रूप में, वही द्वारपाल उनको रोक रहे हैं। उतने में देवता लोग आ गए, बाकी सब वो भी रोकने लगे उनको। उतने में इंद्र को खबर किया कि ये बिना पूछे लेके जा रहे हैं। अरे इंद्र भी आया, वो भी सेना लेकर आया, भगवान को विरोध कर रहा है वो, क्यों ले रहे आप मुझे पीछे बिना। बोला अच्छा, भगवान ने आराम से सबको परास्त कर दिया। इंद्र अभी कुछ देर पहले, हाँ कुछ देर पहले भगवान के रूप में उनका पूजन कर चुका है, दंडवत कर चुका है, आज्ञा ले चुका है, सेवा कर चुका है उनकी। लेकिन जब उसकी भोग की वस्तु स्वयं भगवान ले रहे हैं, जब भगवान की दी हुई भोग की वस्तु है वो भगवान ही खुद ले रहे हैं उसमें से, तो ये भूल गया कि भगवान है। ये देवता की स्थिति है। और बाय द वे आपको ये बताना चाहिए, देवताओं का यहाँ के 6 महीने देवताओं का 1 दिन होता है, तो देवताओं के कुछ ही दिन पहले, यहाँ के कुछ साल पहले भगवान 7 साल के बालक थे और उन्हें गिरिराज को उठाया था और इंद्र का गर्भ हरण किया था, तब भी इंद्र ने आकर गिड़गिड़ाए थे, हे भगवान माफ़ कर लो मुझे, आप कृपा करके क्षमा कर देना, मैंने गलती किया, मैंने आपको इतना कष्ट दिया, मैं बहुत मूर्ख हूँ, ऐसा वैसा बहुत सारा। भगवान ने कहा दोबारा गलती मत करना। फिर मैं बोला कि मैं बहुत पश्चाताप कर रहा हूँ, मुझे कुछ ना कुछ करना है आपके लिए, क्या मैं आपका अभिषेक कर सकता हूँ क्या। हाँ करो भाई करो। तो वरुण का सिंहासन लाया, वायु का छतरी लाया, अपनी तरफ से आकाश गंगा लाया और ऐरावत से 5 सुंड से आकर ऐरावत कुंड बनाया और सुरभि के दूध से और ऐरावत के सुंड से आकाश गंगा जल से अभिषेक किया, सत्कार किया, क्या क्या नहीं किया, माफी मांगा, गिड़गिड़ाया, डर के मारे कांप रहा था। कुछ दिन पहले की बात है उनके हिसाब से, वो तो भी कुछ दिन पहले की बात है, कुछ क्षण की बात है कि अभी आए थे वो माता के कुंडल लेकर। फिर भी भोग लालसा इतनी होती है देवताओं के अंदर कि भगवान का दिया हुआ नंदनवन का एक पेड़ वो ले गए तो उनको सहन नहीं हुआ, युद्ध करने के लिए आ गए वो। फिर भगवान ने परास्त करके उसके दिमाग को ठिकाने लाया, फिर दंडवत किया, माफ करना भगवान, ले जाओ, मन बड़ा उपकार कर रहे हैं, ले जाओ। हाँ, फिर वो पेड़ को लेकर सत्य मामा अपने घर पे आई और अपने आंगन में फिर वो पेड़ लगाया। ऐसा कहते हैं कि बहुत सारे राजहंस के पक्षी और बहुत सारे भंवरे स्वर्ग लोक से उस पेड़ के साथ में पृथ्वी पर आ गए गुंजन करने के लिए, भगवान को आनंद देने के लिए। लेकिन फिर भी गड़बड़ समाप्त नहीं हुआ, वो जो पेड़ लगाया ना उसके फूल भी रुक्मिणी के आंगन में गिरते थे। भगवान का प्रेम का सिलसिला चलता रहा इस तरह से। तो इस तरह से 16,108 कन्याओं के साथ में भगवान ने विवाह किया, सब लोगों को वो द्वारका लेकर आए और सब लोगों को अभी देखिए वे लौट के आए ना स्वर्ग से, तो नारद मुनि भी आए थे उस समय। 16,108 महल में 16,108 विवाह किए उन्होंने, मतलब क्या किया, 16,100 रूप धारण किए उन्होंने। हर एक उस कन्या के साथ एक कृष्ण थे और हर एक महल में शादी का मंडप था, अपने अपने घर में, मतलब उन कन्याओं के घर में भगवान ने सबके साथ में वरण किया। नारद मुनि देख रहे थे, क्या बात है, वाह क्या ऐश्वर्य है भगवान का, एक एक घर में हस्तिदंत के फर्नीचर, फव्वारे घर में, गार्डन, झूला सोने का, सूरज की किरण ऐसे आ रही है मानो हजारों सूर्य चमक रहे हैं, इतना सौंदर्य, इतना ऑपुलेंस, इतना ऐश्वर्य, इतना आनंद, पारिजात का सुगंध, भंवरे, क्या कहें, क्या वर्णन करते जाए। नारद मुनि दंग हो गए। कुछ देर बाद में उनके मन में विचार आया कि कैसे रहते होंगे 16,100 पत्नियों के साथ, कितना समय देते होंगे, आश्चर्य था उनको बोल इस बात का। तो नारद मुनि फिर देखने को आए एक दिन क्या चल रहा है द्वारका में। हम तो सुनते हैं दुनिया में, नारद मुनि तो बहुत विद्वान है, वो तो कई बड़े बड़े विद्वान, राजा, ऋषि, संत उनके शिष्य हैं और कई राजाओं को उन्होंने माया से बाहर निकाला है, उनके सांसारिक प्रापंचिक कौटुंबिक कष्टों से उनको मुक्त कराया उन्होंने। वो जानते हैं ना एक एक पत्नी को रखना भी कितना कष्टमय चीज़ है और राजाओं को कई पत्नियां होती हैं और कई प्रकार के संकट तंटे उन्होंने मिटाए हुए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो जो था ना हर्ष शोक, जो राजा चित्रकेतु था, उसको कई करोड़ों पत्नियां थी, पुत्र के प्राप्ति के लिए वो एक 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 करता गया कि भाई इससे होगा, करोड़ों पत्नियां हो गई उसकी, कहते हैं कि 10 करोड़ पत्नियां थी उसकी, फिर भी उसको पुत्र नहीं हुआ। फिर अंगिरा मुनि और आए उनको मिलने के लिए, उनका पुत्र चाहिए, आप कुछ भी करो, कुछ टोना करो, जादू करो, सिद्धि का उपयोग करो, मुझे पुत्र चाहिए। वो कहते हैं आपके नसीब में पुत्र नहीं है, नहीं हो सकता है, नहीं मुझे चाहिए। फिर वो कुछ ना कुछ सिद्धि का उपयोग करते हैं, बोलते हैं कि एक पुत्र होगा आपको, लेकिन उसका नाम हर्ष शोक होगा, वो आपके सुख का भी कारण होगा और दुख भी बहुत देगा आपको, लेकिन सुख का कारण होगा इतना ही सुना उन्होंने, जितना उनको उस समय चाहिए था उतना ही सुना, आगे का नहीं सुना। और सुख मिलेगा ना पुत्र का, बस आई डोंट वांट एनीथिंग, आज के तारीख में मेरा मन इस भोग पर स्थित है जो मुझे चाहिए और वो मिलने की गारंटी मिल गई, बस मुझे और कुछ सुनना नहीं उसके आगे, मिलेगा ना मुझे वो, बस मुझे चाहिए वो। तो क्या पुत्र, वो जिस पत्नी से वो पुत्र हुआ उस पत्नी पर अधिक स्नेह हो गया उसका, उसी के साथ समय बिताने लगा वो बच्चा जिस पर पूरा ध्यान और उसके माता जिसने वो पुत्र दिया है, बस उसी में संसार उसका हो गया, बाकी सारी कन्याएं जितनी पत्नी थी वो निग्लेक्ट हो गई, दुर्लक्षित हो गई। तो उनको आनंद होगा क्या, इतने समय तो हमारे पास थे, अभी तो एक कन्या ने पुत्र दिया, पत्नी ने तो उसके ही हो गए वो, और हमारा कुछ वैल्यू नहीं बचा, ये प्रपंच है, इसको प्रपंच कहते हैं। हाँ, दिस इज द नॉर्मल मटेरियल लाइफ। तो क्या हुआ फिर, सभी पत्नियों ने मिलकर प्लानिंग किया कि ये हमको सहन नहीं हो रहा है, वी कैनॉट टॉलरेट दिस, इसका अंत होना ही चाहिए। तो उन्होंने एक दिन विष लेकर उस बालक को खिलाया कि सारे हमारे दुख का जड़ ये बालक है, उसी को मार देंगे तो फिर पति के दिमाग ठिकाने लग जाएंगे। बालक मर गया। राजा को पता चला उस समय, फिर अंगिरा मुनि आए, बताया था ना उसको, आपको आपको बताया था ना कि ये आपके हर्ष का कारण होगा और शोक का भी कारण होगा। तब जाकर हमने योग बल से उस पुत्र को वापस बुलाया और बात करो उससे। तो पुत्र ने बोला, आप मेरे कौन से माता पिता हूं? उनको लगा तो मैं आपका माता पिता हूं, द ओनली वन। ब्रह्मा को लगा था ना कि मैं एक ही ब्रह्मा हूं, वैसे इनको लगा क्या कि ये हाउ इज आस्किंग दिस। तो बोलते, पिताजी मेरे आपके पुत्र होने के पहले कई जन्म हो चुके हैं और कई माता पिताओं के गर्भ से मैं जन्म ले चुका हूं, इसलिए पूछा आप कौन से हो। तब जाकर वो चित्रकेतु को बोध हुआ। ये सब नारद मुनि के दृष्टि में है, सब कुछ बहुत अनुभव लिया उन्होंने। तो सोच रहे हैं कि कृष्ण भगवान के 16,108 पत्नियां हैं, और वैसे भी सत्यभामा और रुक्मिणी का जो चल रहा था ना पारिजात के बारे में, वो पता था उनको। और देखते जाके जरा क्या होता है। तो नारद मुनि चले गए। तो नारद मुनि के इस विजिट में, हाँ, थोड़ा सा द्वारका का वर्णन भी दिया है, वो सुनना जरूरी है, क्योंकि द्वारका में बैठे ना हम लोग। नारद मुनि आश्चर्यचकित हो गए थे ये सुनकर कि भगवान ने इतने सारे रूप धारण कर लिए शादी करने के लिए। तो बड़ा उत्सुकता थी उनको। वो द्वारका में एक दिन आए और उन्होंने, मैंने उनको उस दिन 90 लाख पैलेस कहे थे ना, तो इधर 9 लाख दिए हैं, तो मैंने उस दिन गलती किया। हाँ, भगवान के 16,108 अलग और 9 लाख दूसरे अलग। देखा कि वो फर्स्ट क्लास संगमरमर से बने हुए महल थे सब। उनके सारे दरवाजे सोने और चांदी से बने हुए थे, सॉलिड गोल्ड, नो गोल्ड लिपिंग, नो प्लेटिंग। हाँ, सारी द्वारका नगरी स्वच्छ थी और इट इज वॉज द एग्जीबिशन ऑफ बेस्ट आर्किटेक्चरल ब्यूटी। स्थापत्य शास्त्र का कौशलपूर्ण प्रदर्शन था वो। बाजार की जगह थी, घरेलू जगह थी, राज दरबार की जगह थी, बहुत सारे मंदिर थे, शिव जी के मंदिर थे, देवियों के मंदिर थे, और सारी जो शहर की रचना सुंदरता ऐसी थी कि मानो हजारों लाखों सूर्य एक ही बार चमक रहे हो, ऐसी रत्नों की रचना की गई थी। उसके रिफ्लेक्शन लग रहा था कि सूरज चमक रहे हैं। मैदान थे, उपवन थे, बगीचे थे, उसमें कमल खिले हुए थे, उसके अंदर राजहंस, मोर, सुंदर सुंदर चक्रवाक जैसे पक्षी गुंजरव कर रहे थे। इतना प्रसन्न वातावरण था। विश्वकर्मा ने अपना सारा कौशल लगा दिया था, ग्रेटेस्ट ऑफ स्किल्स ही हैज एग्जिबिटेड। फिर भगवान एक महल में प्रवेश किया उन्होंने, वो रुक्मिणी का महल था। भगवान रुक्मिणी के कोच पर, मतलब यानी सोफा पर बैठे हुए थे। जैसे ही नारद मुनि अंदर आए, ऐसे कहते हैं कि भगवान रुक्मिणी के महल में बैठे थे, वहां पर रुक्मिणी ने कुछ अगरबत्तियां जलाई थी और वो अगरबत्तियों का धुआं का एक ऐसे बादल जैसा बन गया था, और उस बादल को देखकर मोर नाच रहे थे। उनको लग रहा था कि बादल आ गए भगवान के महल में। तुरंत भगवान खड़े हो गए और रुक्मिणी ने सोने के हैंडल वाला चामर लिया। भगवान ने नारद मुनि को अपने आसन पर बिठाया, उनके चरण धोए, उनके चरण का पानी पिया, चरण का पानी सर पे छिड़का। नारद मुनि का बड़ा संकोच हो रहा था, लेकिन नारद मुनि ने फिर भी स्वीकार किया उसको, ये समझ के कि भगवान एक मानव राजा का रोल अदा कर रहे हैं, इसलिए उनका कर्तव्य है कि वो एक आदर्श स्थापन करें। इसलिए वो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। भावग्राही प्रभु, हमारे कथा के लिए बहुत ऑस्पिशियस है ये, गाय ने प्रवेश किया हमारी कथा में। श्री गौ माता की जय हो। तो फिर भगवान ने कहा, मैं क्या सेवा करूं आपकी? तो नारद जी ने कहा कि मैं बहुत धन पवित्र हूं, मतलब बहुत भाग्यवान हूं, आपका दर्शन हुआ, और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि हमेशा मेरी याद, आपकी याद मेरे हृदय में बनी रहे। तो फिर भगवान ये छोड़कर दूसरे महल में गए। उधर भी भगवान बैठे हुए हैं, सत्य मामा के साथ। तो ये उधर वो सत्य मामा के साथ में चेस खेल रहे हैं, द्यूत खेल रहे हैं, चौसर का खेल खेल रहे हैं। उधर उद्धव जी भी बैठे हुए हैं, उद्धव जी रानी और भगवान मिलकर चेस खेल रहे हैं। उधर ही भगवान का स्वागत हुआ। फिर अगले पैलेस में गए तो कहीं पर भगवान यज्ञ कर रहे हैं, तो कहीं ब्राह्मणों को भोजन खिला रहे हैं, कहीं शांत बैठकर गायत्री जप कर रहे हैं, तो कहीं तलवार और ढाल से लेकर युद्ध कौशल का प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने आंगन में, हाँ कहीं अपने पत्नी के साथ झूला झूल रहे हैं, कहीं अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, बच्चों को मना रहे हैं, हाँ उनके साथ में उनको आप खेलते हो ना बच्चों से गार्डन में जाकर, टू एंटरटेन चिल्ड्रेन, मेक देम हैप्पी। कहीं अपने पत्नी के साथ हास्य विनोद कर रहे हैं, कहीं संतों के साथ बैठकर पुराणों का वर्णन सुन रहे हैं, कहीं भाटों के साथ बैठकर पुराने यशस्वी राजाओं की कथा सुन रहे हैं महल में बैठकर, और कहीं स्वयं पर ध्यान कर रहे हैं सुबह के समय, और कहीं गरीबों को उनकी ज़रूरतों को दे रहे हैं, दान दे रहे हैं। कहीं कृष्ण बलराम बैठकर, देखो कृष्ण और बलराम बैठकर जीवन के लक्ष्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये नारद मुनि देख रहे हैं। श्री कृष्ण बलराम जो जीवन के स्वयं लक्ष्य हैं सबके लिए, वो बैठकर चर्चा कर रहे हैं, एक मनुष्य के रूप में लीला कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। नारद मुनि देखकर बड़े अचंभित हो गए। उन्होंने ये भी देखा कि कहीं बैठकर कृष्ण भगवान अपने पुत्रों के और अपने पुत्रों के पुत्रों के विवाह का अरेंजमेंट कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं पत्नी के साथ में इनका विवाह कैसे किया जाए। बाय द वे कृष्ण भगवान ने अपने हर एक पत्नी को 10 पुत्र दिए और 10 पुत्र के साथ एक कन्या दिया हर एक वाइफ को, और उन सब लोगों को 10-10 पुत्र हुए। तो इनकी फैमिली लाखों में थी, घर में जाके रूम पे आप गिन सकते हो, 16,108 × 10 इतने सन, उतने को 10 सन, तो 16,108 × 2 2 ज़ीरोज़, और उतनी कन्याएं। रुक्मिणी की कन्या जो थी ना, उसका विवाह बाली के साथ में हुआ, तो कृतवर्मा का पुत्र था। ऐसे सभी लोगों का विवाह भगवान ने कराया। यही तो यादव सेना थी, पूरा भगवान का परिवार इतना बड़ा था। उसमें रुक्मिणी का पुत्र प्रद्युम्न था, कामदेव का पुत्र था वो साक्षात, उसको देखकर विश्व की सारी युवतियां मोहित होती थी। उसका पुत्र अनिरुद्ध जो सूर्य का अवतार था, उसका विवाह उषा और रोचना से हुआ, 2 पत्नियां थी उनकी। ऐसा भगवान का परिवार था, दिव्य परिवार। तो कहीं भगवान देवताओं की पूजा कर रहे हैं, कहीं यज्ञ कर रहे हैं, कहीं जनता का कल्याणकारी कार्य करें, कहीं कहीं कुआं खोद रहे हैं, कहीं पब्लिक पार्क बना रहे हैं, कहीं ऐसा लिखा है यहाँ पर बहुत सुंदर लिखा है, सिंधी घोड़े पर सवार होकर चल रहे हैं सिंध प्रांत के, और कहीं जानवरों को शिकार, मतलब क्या कहते हैं उसको, मुर्गिया खेल रहे हैं। इस तरह से भगवान का चमत्कारिक ये जो दृश्य है, ये देखकर नारद मुनि बड़े अचंभित हो गए। उसी के साथ नारद मुनि ने और भी देखा कि वो दिन भर अपने उस पत्नी के घर में रहते थे, हर एक पत्नी के साथ में 24 आवर्स रहते थे वो, साथ साथ में स्वयं राज दरबार में भी जाते थे, क्योंकि इंद्र ने सुधर्मा नाम का आपका सभागृह था वो पूरा इम्पोर्ट किया था द्वारका में भगवान के लिए। उसमें बैठकर भगवान हमेशा संतों का मुख से दिव्यवाणी सुनते थे, उपदेशवाणी। वहाँ पर लोग भाट आकर भगवान के लिए गीत गाते थे, नृत्य करते थे उनको रिझाने के लिए, मंत्रीगण की मीटिंग हुआ करती थी, राज्य के कल्याण के लिए चर्चा हुआ करती थी, ये सारे दिव्य काम वहाँ पर। ऐसे कहते हैं कि नारद मुनि ने देखा कि राज्य धर्मा सभा के अंदर भी बहुत सुंदर पक्षी गुंजारव कर रहे हैं, भंवरे गुंजारन कर रहे हैं, फूलों की खुशबू आ रही है, हाँ हर प्रकार की व्यवस्था सुधर्मा असेंबली में भी थी। लेकिन गम्मत की बात ये थी कि जब वो दरबार में थे तब वो अकेले रहा करते थे, एक व्यक्ति रहा करते थे। दरबार से निकलते थे तो 16,108 बनकर अपने महल में जाते थे, और महल में जो कृष्ण है उसे एक रूप हो जाते थे। ये नहीं कि वो निकलते थे और घर में कोई रहता नहीं था, 24 आवर्स घर में भी रहा करते थे, ऑफिस के समय ऑफिस में भी रहा करते थे। सारा चमत्कार नारद मुनि ने देखा और हाथ जोड़े उन्होंने, भगवान आपकी लीला अपरंपार है, आपकी लीला को कौन समझ सकता है, आप कार्य कैसे करते हैं, दिव्य करते हैं, इसकी था कौन पकड़ सकता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की। इस तरह से अपने गृहस्थी जीवन में कैसे आदर्श व्यवहार करना चाहिए एक मनुष्य की तरह, ये भगवान ने अपने जीवन में उदाहरण के साथ बताया। धर्म अर्थ काम मोक्ष इन कर्तव्यों को भगवान ने बड़े ही प्यार से निभाया और नारद मुनि ये देखकर बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न हृदय से वो फिर अपनी सेवा करने के लिए आगे चले गए। बोलो नारद मुनि भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा।